नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। आतिथ्य और यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी ओयो ने इस साल अगस्त तक अपने पोर्टफोलियो में हिल स्टेशन में 300 नए होटल जोड़ने की योजना बनाई है। कंपनी ने सोमवार को ये जानकारी दी। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के कारण कंपनी ये कदम उठाने जा रही है। कंपनी ने बयान में कहा कि उत्तर भारत में मनाली, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, शिमला, डलहौजी, हरिद्वार में नए होटल जोड़े जाएंगे। दक्षिण में कंपनी ऊटी, मुन्नार और कोडाइकनाल में नए होटल जोड़ेगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में गंगटोक, दार्जिलिंग और शिलोंग और पश्चिम में लोनावला और महाबालेश्वर में नए होटल जोड़े जाएंगे। ओयो के प्रवक्ता ने कहा कि हाल के दिनों में हिल स्टेशनों पर होटलों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है और ये सिलसिला अगले 3 महीने तक जारी रहेगा। प्रवक्ता ने कहा कि महत्वपूर्ण हिल स्टेशनों पर विस्तार के जरिए कंपनी पर्यटकों को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराना चाहती है। इसके अलावा कंपनी का इरादा घरेलू पर्यटन की वृद्धि में भी योगदान देने का है। खाद्य उत्पाद कंपनी पतंजलि फूड्स ने अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार और 5,000 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ हासिल करने के लिए एक आक्रामक वृद्धि योजना तैयार की, जिसमें FMCG कारोबार की अहम भूमिका होगी। पतंजलि फूड्स लिमिटेड का नाम पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज था, लेकिन सितंबर 2019 में कर्ज समाधान प्रक्रिया के तहत पतंजलि समूह ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। पतंजलि समूह के प्रमुख बाबा रामदेव ने PTI भाषा के साथ बातचीत में कहा कि पतंजलि फूड्स अपने कारोबार विस्तार के लिए खाद्य उत्पाद और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले उत्पाद कारोबार को बढ़ाने के साथ बड़े पैमाने पर पाम के पेड़ भी लगाएगी। उन्होंने कहा कि पतंजलि फूड्स ने अगले 5 वर्षों में FMCG क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए एक दृष्टि पत्र तैयार किया है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य अगले 5 साल में कर पूर्व आय के स्तर पर 5,000 करोड़ रुपए का लाभ और 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का शुद्ध लाभ एक साल पहले के 806.30 करोड़ से बढ़कर 886.44 करोड़ रुपए हो गया। वहीं इसकी कर पूर्व एबिटा आय 1,577 करोड़ रुपए रही थी। AI रोमांचक नए अवसर मुहैया कराती है, लेकिन साथ ही ये निजता और फेक न्यूज के संबंध में नए जोखिम भी पैदा करती है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने सोमवार को ये बात कही। वह यहाँ G20 देशों के प्रधान लेखा परीक्षा संस्थानों के दूसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कांत ने कहा कि दुनिया आज प्रौद्योगिकी के जरिए आपस में जुड़ी है, इससे कामकाज बेहतर हुआ है और सूचना को अधिक तेजी तथा कुशलता के साथ प्रसारित किया जा सकता है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि ये नई प्रौद्योगिकियां अपने साथ नए जोखिम भी लाती हैं। निजता और डेटा सुरक्षा के लिए खतरा इनमें प्रमुख चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि देशों को नए प्रौद्योगिकियों को लेकर संतुलित नजरिया अपनाना होगा। भारत और UAE के केंद्रीय बैंकों के बीच रुपये और दिरहम में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बातचीत काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को ये जानकारी दी। इस कदम से द्विपक्षीय व्यापार में लेन देन की लागत घटेगी। गोयल ने कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेता तेजी से निर्णय लेने वाले हैं, ऐसे में हम जल्द अच्छे नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। भारत और UAE के बीच FTA पिछले साल मई से लागू हुआ। FTA से द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंक SOP और तौर तरीकों पर बातचीत कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि ये बातचीत मार्च 2022 में शुरू हुई थी और अब इसे एक साल से ज्यादा हो गया। दोनों देशों ने इस बारे में उल्लेखनीय प्रगति की है। महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में उसके इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर दोगुने से अधिक होकर 36,816 इकाई रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह की कंपनी की बिक्री वित्त वर्ष 2021-22 में 17,522 इकाई थी। कंपनी ने बीते वित्त वर्ष में अपना नया तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन जोर ग्रैंड पेश किया। इस वाहन के लिए एक साल के भीतर 23,000 से अधिक की बुकिंग मिली। महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के CEO सुमन मिश्रा ने कहा, वित्त वर्ष 2022-23 में हमने उच्चतम बाजार हिस्सेदारी के साथ इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के बाजार में नेतृत्व वाली भूमिका को जारी रखा। जून 2023 में हम 1,00,000 EV बिक्री के स्तर पर पहुंच जाएंगे, जो क्षेत्र में हमारे गहरे अनुभव और नेतृत्व को दर्शाता है। स्विट्जरलैंड के UBS बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने वित्तीय संकट का सामना कर रहे क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण पूरा कर लिया। बैंक ने एक बयान में कहा, यूबीएस ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार करते हुए आज क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण पूरा कर लिया। क्रेडिट स्विस लंबे समय तक यूबीएस बैंक का प्रतिस्पर्धी रहा है। ज्यूरिख स्थित दोनों बैंक 3 अरब फ्रैंक के सौदों के तहत एक हो रहे हैं। मार्च में जब क्रेडिट स्विस के शेयर गिर गए थे और जमाकर्ताओं ने डरकर अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था, ऐसे माहौल में स्विस सरकार और नियामकों ने जल्दबाजी में इस सौदे को अंतिम रूप दिया था। इस विलय समझौते का मकसद 2 अमेरिकी बैंकों के पतन के बाद वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उथल पुथल को दूर करना था। इस अधिग्रहण के बाद यूबीएस स्विट्जरलैंड का एकमात्र प्रमुख बैंक रह जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।